ओम शांति, ओम शांति। आज का राजयोग शिविर का जो सत्र है, समय का चक्र, आपने पिछले दो दिनों में आत्मा का यथार्थ परिचय देखा, पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय मिला। आज है समय के साथ का परिचय। समय क्या कहता है, समय का इशारा क्या है, और समय के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्योंकि समय के विषय में बहुत सी बातें कही हुई है। किसी ने बहुत सही कहा है, समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। समय प्रति समय हमसे कोई न कोई प्रतिउत्तर की मांग करता है। कोई परिस्थिति आई, कोई समस्या आई, तो वो समय हमसे एक प्रतिउत्तर की मांग करता है कि अब हमारा प्रतिउत्तर क्या होगा, सकारात्मक या नकारात्मक। और जब सकारात्मक प्रतिउत्तर निकलता है तो समय हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन अगर नकारात्मक प्रतिउत्तर निकला तो समय पछाड़ता भी है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि समय में जब भी कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई समस्या आती है, तो एक जागृति के साथ हम सकारात्मक प्रत्युत्तर अवश्य दें। ये भी कहा है कि अगर हम समय के साथ परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि समय क्या प्रतिउत्तर मांगता है, परिवर्तन, और अगर समय के साथ वो परिवर्तन नहीं किया गया तो समय हमें परिवर्तन करने लिए मजबूर करेगा, और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा। क्यों? क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं, समय की मजबूरी है, परिवर्तन होना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। इसीलिए कहा कि जब समय प्रतिउत्तर की मांग करता है तो समझ लो एक परिवर्तन चाहता है, और वो परिवर्तन सकारात्मक दिशा में होना जरूरी है। नहीं तो फिर कहा जाता है कि पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। समय एक पंछी की तरह उड़ जाता है, बाद में अगर पश्चाताप भी किया कोई फायदा नहीं। इस संसार में समय के साथ जब हर चीज परिवर्तनशील है तो परिवर्तन ये कुदरत का नियम है, और इसीलिए इस परिवर्तन को समझते हुए समय के साथ अपनाना आवश्यक है। ये समय क्या मांग कर रहा है? जिस तरह से मनुष्य के सामने अनेक प्रकार के विपरीत बातें आ रही है, विपरीत घटनाएं घट रही है, तो ये समय की मांग भी है कि हम अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता को महत्व दें और उसी के आधार से जीवन के अंदर परिवर्तन को अपनाए। समय एक चक्र में चलता है, समय लीनियर प्रोसेस में नहीं चलता है, इट मूव्स इन अ साइक्लिक डायरेक्शन। और इसीलिए समय के साथ जितने भी चक्र बने हैं समय के, वो भी सब साइक्लिक है, लीनियर नहीं है। चाहे दिन और रात का चक्र ले लो, वो भी चक्र है। ऋतुओं का चक्र ले लो, मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र ले लो, या कुदरत की साइकिल को भी अगर देखे, पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी समुद्र में मिल जाता है। ये भी कुदरत की साइकिल एक चक्र में ही चलती है। तो हर चक्र साइकिल के रूप में चलते हैं, तो ये समय का चक्र भी चक्र के रूप में ही चलता है। लेकिन हर चक्र को चार अवस्था से गुजरना पड़ता है। जिस तरह से दिन और रात का चक्र अगर देखा जाए तो उसमें भी चार अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, फिर सुबह आ जाती है। ऋतुओं का चक्र देखो तो उसमें भी चार अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र देखो, उसमें भी चार अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। इसी तरह ये समय के चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहा जाता है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात्रि सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई इंसान का काम नहीं है। कुदरत की रचना इस तरह से है, एक ग्रेजुअल चेंज आता जाता है, और उस परिवर्तन की प्रक्रिया में सुनहरी सुबह आ जाती है। कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, उसको पता भी नहीं चलता है भोर कैसे निकल आती है। ठीक इसी तरह घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सतयुग में बदलनी ही है, कोई चाहे या न चाहे। कुदरत की रचना इस तरह से है कि ये परिवर्तन भी बहुत ग्रेजुअल है लेकिन तीव्र है। 100 साल के अंदर विज्ञान ने किस तरह की तरक्की की, किस तरह का परिवर्तन लाया, हम सभी अनुभव करते हैं। ठीक इसी तरह आगे भी ये परिवर्तन, बहुत तीव्र गति का परिवर्तन आरंभ हो गया है। जब 100 साल में इतना चेंजेस आ सकता है, तो आने वाले समय में परिवर्तन भी इतना ही तीव्र गति से और सतयुग की ओर कदम आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए कहा कि ये समय हमें क्या कहता है, हमें भी अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमने अपने जीवन में, यानी अपनी मानसिकता में, अपनी वृत्ति के अंदर, अपनी सोच में परिवर्तन नहीं लाया, तो समय हमें मजबूर करेगा, या तो समय उस व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त कर देगा। दूसरी बात कि हर चक्र की एक अवधि होती है, जिस अवधि में ही उसको वो चक्र कंप्लीट करना होता है। ये कुदरत की सेटिंग है। दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में वो चक्र कंप्लीट हो जाता है। ऋतुओं के चक्र की अवधि एक साल है, उसी में वो चक्र कंप्लीट हो जाता है। ठीक इसी तरह इस समय के चक्र की भी अवधि है 5000 साल, और 5000 साल के अंदर ही ये चक्र कंप्लीट हो जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं 5000 कहां से आया, शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों वर्ष का बताया है, और आप कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों ही 5000 साल में कंप्लीट हो जाएगा। जी 5000 साल में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हमें गलत फहमी में न रहे कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। नहीं, समय 5000 साल का है, यह हर धर्म में बताया गया है, सिर्फ हमने समझा नहीं है उस कैलकुलेशन को। वैसे अगर देखा जाए तो जो कई लोग कहते हैं कि 5000 साल का चक्र है, उसका प्रमाण क्या है? तो मैं अगर पूछूं कि 24 घंटे का कोई प्रमाण है, ये 24 घंटे कहां से आए? जिसने भी कैलकुलेट किया, 60 सेकंड की एक मिनट बनाई, 60 मिनट का एक घंटा बना, और इस तरह से 24 घंटे में इस चक्र को डिवाइड कर दिया। कभी हमने ये प्रूफ मांगा कि ये 60 सेकंड कहां से आई, किस बेसिस पर आई? नहीं, वी एक्सेप्टेड। अगर 100 सेकंड की एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? चलता ही था। 60 फिगर कहां से आया और उसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। वी एक्सेप्टेड। संसार में कई चीज स्वीकार ही करनी होती है। कोई अगर कहे कि मैं ये 60 सेकंड को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं आज से अपना नया चक्र शुरू करता हूं, 100 सेकंड की एक मिनट और 100 मिनट का एक घंटा, घंटे कम हो जाएंगे, पर दुखी कौन होगा? संसार तो अपनी रीति से चलता ही रहेगा, 60 सेकंड के हिसाब से ही। जिस व्यक्ति की सोच ये है कि भाई मैं आज से ये चक्र बदल लूं, वो दुखी होगा, बदल नहीं सकता है। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए साल का चक्र 365 दिन का कहां से आए, 365 दिन, तो कहेंगे विज्ञान कहता है कि 365 दिन पृथ्वी को चक्कर लगाने में लगता है सूर्य के चारों ओर, वहां से आए। और इस तरह से पूरा इंग्लिश कैलेंडर 12 महीने का बना दिया और सारे दुनिया ने उसको स्वीकार किया। परंतु अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर में कितने दिन होते हैं साल में, कितने दिन होते हैं? इंग्लिश कैलेंडर में 365 दिन विज्ञान ने कहा। हिंदू कैलेंडर भी एक विज्ञान पर ही बना है जो शायद बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। तो हिंदू कैलेंडर में साल में कितने दिन होते हैं? 354 दिन। और 354 दिन, इतना गैप कोई एक दो दिन का गैप नहीं है, इतने दिनों का गैप है। और हर 4 साल के बाद फिर अधिक मास आ जाता है, एक मास बढ़ जाता है। हम भारतवासियों ने दोनों कैलेंडर लेकर के जीवन को चलाया, दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर चलाया और अपना त्योहार मुहूर्त जो भी निकालना हिंदू कैलेंडर पर चला। हमने ये नहीं कहा हिंदू कैलेंडर ज्यादा एक्यूरेट है इसीलिए इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, और ये भी नहीं कहा कि मॉडर्न साइंस ने कहा है इसलिए अभी हिंदू कैलेंडर की आवश्यकता नहीं। आज भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब पूर्णमासी और अमावस्या आती है तो पूरा समुद्र का पानी ज्वार भाटा के रूप में उछलता है, और इतना एक्यूरेट कैलकुलेशन है। फिर भी भारतवासी दोनों कैलेंडर को लेकर चलते हैं, उसका प्रूफ नहीं मांगा, स्वीकार कर लिया। तो 5000 साल का प्रूफ चाहिए? अगर 24 घंटे को स्वीकार कर सकते हो बिना प्रूफ के, अगर 365 354 दोनों को स्वीकार कर सकते हो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, तो 5000 साल का प्रूफ चाहिए? वैसे 5000 साल का प्रूफ हमारे पास है। क्या प्रूफ है? तो हर धर्म में 5000 साल का वर्णन जरूर आता है। हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल हुए। और उस महाभारत के अंतिम पर्व में, अंतिम चैप्टर में ये बात लिखी हुई है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर में क्या चलता है? महाभारत चलता है? नहीं चलता है। तो हो गया 5000 साल। इस्लाम धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में ये बात लिखी है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म ग्रंथ के हिसाब से भी कयामत का समय आ रहा है। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि 3000 years before Christ, there was heaven on earth. 3000 years before Christ or 2000 years after Christ, Nostradamus की भविष्यवाणी के हिसाब से भी the golden era is to come. पुनः आ रहा है। मायन संस्कृति के हिसाब से उनका तो कैलेंडर ही 5000 साल का है। तो हर धर्म में अगर देखा जाए तो 5000 साल का वर्णन जरूर मिलेगा, लाखों साल का वर्णन किसी भी धर्म में नहीं किया गया है। तब एक प्रश्न जरूर आता है कि फिर आर्कियोलॉजी वाले जो कहते हैं कि भाई ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है, वो कैसे कहते हैं? पृथ्वी तो इतनी पुरानी है ही ना। जिस तरह से दिन और रात का एक चक्र 24 घंटे का है, हमने 2023 साल से गिनती किया कि 2023 साल हो गए, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात के चक्र चलते थे कि नहीं चलते थे? हमने कैलकुलेट नहीं किया तो क्या हुआ? चक्र तो चलता ही था। ठीक इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है इस पृथ्वी पर, लेकिन ऐसे कितने काल चक्र चल गए? तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना। तो आर्कियोलॉजी वाले अगर पत्थर निकालेंगे कि ये करोड़ों साल पुराना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो है ही। एक काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर 5000 साल का है। अब इसको अगर देखें तो कैसे है ये 5000 साल का चक्र? तो उसको स्वास्तिका के रूप में दर्शाया गया है। स्वास्तिका यानी संस्कृत के सुअस्ति शब्द से आया है। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। अर्थात ये काल चक्र सदा ही शुभ है, इसकी कोई घड़ी अशुभ नहीं है। और इस स्वास्तिका को चार भाग में विभाजित किए हैं और चारों भाग एक समान है। 5000 साल का चक्र हो तो हर युग 1250 साल का है और उसमें हर घड़ी सदा शुभ है। इसीलिए गीता के सार में ये बात आती है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। उसको बुरी कहना ये हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा की या परिपक्वता की कमी के कारण हम कहते हैं ये तो बहुत बुरा हो गया। हर एक घटना कोई ना कोई सीख देकर जाती है, अनुभवी बनाकर जाती है, तो ये तो कल्याण ही है। आगे के लिए व्यक्ति अगर अनुभवी हो जाए तो ये बड़ा कल्याण हुआ या नहीं हुआ? इससे बड़ा कल्याण और क्या हो सकता है कि जो घटनाएं आपको अनुभवी बनाए, मैच्योर बनाए, सीख दे दे, तो वो तो कल्याण ही कल्याण है। इसीलिए कहा इस काल चक्र की कोई भी घड़ी बुरी है ही नहीं। अब इस स्वास्तिका को अगर देखें, हर धर्म में इसलिए स्वास्तिका का चिन्ह किसी न किसी रूप में मिलेगा। क्रिश्चियन धर्म में क्रॉस चार भाग है ना, इस्लाम धर्म में भी स्वास्तिका मिलेगा, उल्टा मिलेगा, स्वास्तिका जरूर है। हर धर्म में आप देखेंगे ये चिन्ह आपको मिलेगा, अलग तरीके से मिलेगा, लेकिन जहां चारों भाग एक समान बताए, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये चक्र कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते। जिस तरह दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं। हां, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि रात को 12 बजे ही वो चक्र शुरू हुआ था। ठीक इसी तरह ये काल चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका भी पहला पहर सतयुग को माना जाता है। जिस तरह दिन और रात के चक्र का पहला पहर सुबह को माना जाता है, फ्रेश आवर्स, ठीक इसी तरह इस काल चक्र का भी पहला पहर सतयुग को माना गया। सतयुग यानी जहां सत्यता का समय था और ये काल चक्र का हाथ राइट हैंड साइड इस पोजीशन में, अर्थात जहां हर आत्मा ब्लेस्ड सोल थी, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में इस संसार में आती है और जहां सत्यता का समय है, सतयुग जिसको कहा गया, जहां हर आत्मा सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं सूर्यवंश, कि जिस तरह सूर्य की कला कभी कम जास्ती नहीं होती है, यहां आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है। सभी सोले कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में थे, जहां राज्य करने वाले कौन थे, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राज्य करते थे। इसलिए बाइबल में एक बहुत सुंदर बात आती है जेनेसिस चैप्टर 1 में, कि जब भगवान ने ये पहला पहर रचा था तो कैसा था, तो उसमें लिखा गया है कि परमात्मा ने जब ये सृष्टि का पहला पहर रचा था तब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, मनुष्य को परमात्मा ने अपने स्वरूप में बनाया था, जिसको दूसरे शब्द में कहते गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसलिए कहते गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मेनी, भगवान भगवती अनेक है लेकिन भगवान एक है, लेकिन परमात्मा एक है, जिसने इन लोगों को अपने समान अपने स्वरूप में रचा था। और इसीलिए इन देवी देवताओं की पूजा सारे भारत भर के मंदिरों में दिखाई देती है। कितने देवी देवताएं हैं, तो कहते 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। सतयुग सूर्य वंश के अंदर राज्य किसका था, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला, तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण सूर्य नारायण इसीलिए कहा जाता है कि जो सतयुग के राज्य करता थे, जो सूर्यवंशी थे, इसीलिए आज भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर अधिक है। सबसे अधिक मंदिर शिव के मिलेंगे। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां शिव का मंदिर ना हो, लेकिन उसके बाद लक्ष्मी नारायण के मंदिर अधिक मिलेंगे, क्योंकि वो सतयुग के राज्य करता सोले कला संपूर्ण स्वरूप में थे, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक जिसको कहा, जिन्हें कोई शस्त्र नहीं दिखाए गए, इतना पीसफुली उन्होंने उस राज्य को चलाया। उसके बाद संसार का दूसरा समय आया जिसको कहा गया त्रेता युग। त्रेता युग में स्वास्तिका का हाथ नीचे आता है, राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड माना राइटियसनेस, जिस समय में हर चीज राइटियस होती थी, हर कर्म मनुष्य के श्रेष्ठ थे, पूजनीय थे, वंदनीय थे, इतने ऊंचे कर्म थे। तो सतयुग के अंदर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। उसके बाद जब त्रेता युग आया, दो कला कम हुई, 16 कला से 14 कलाधारी हुए, जहां राज्य था श्री राम और श्री सीता का। जिस त्रेता युग को कहा गया चंद्रवंश, कि जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होने लगती है, धीरे धीरे आत्माओं की कला में भी अंतर आने लगा, कम होने लगी। लेकिन फिर भी राइटियसनेस जरूर है। श्री राम राज्य कहा गया उसको, जहां सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार, जहां धर्म का उपकार था। कैसे पता चला श्री राम का राज्य था? शास्त्रों में तो कहा ही गया है, लेकिन श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है, श्री रामचंद्र। सूर्य नारायण कहा और रामचंद्र कहा, जो चंद्रवंशी था। और इसीलिए महात्मा गांधी ने भी भारत के लिए रामराज्य की कल्पना की कि चलो सूर्यवंशी जैसी परफेक्शन तो नहीं ला सकते हैं, परंतु रामराज्य तो बना सकते हैं, सुखी तो बना सकते हैं। लेकिन वह स्वप्न भी स्वप्न ही रह गया और समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और त्रेता युग से द्वापर युग आया, जहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ जाता है। और जिस सतयुग में यह पोजीशन थी, द्वापर युग आते ये पोजीशन में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ये पोजीशन में, अर्थात मांगने का पोस्चर, मांगना आरंभ किया। हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, भक्ति आरंभ होती है। तब कई बार कई लोग प्रश्न करते हैं कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जिस कारण सतयुग त्रेता मिट करके द्वापर युग आया। द्वापर यानी जहां से दो पुर आरंभ हुए, सत्यता माना एकता, द्वापर माना जहां से द्वैत भावना आरंभ हुई। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा गया है कि सतयुग त्रेता युग अद्वैतता का राज्य था भारत में, लेकिन जब द्वापर आया तो द्वैत भावना आरंभ हुई। तब ये प्रश्न आता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो उस स्थिति से नीचे आ गए द्वापर युग में और द्वैत भावना में प्रवेश कर गए। कर्म की बात नहीं है, विज्ञान का, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ एंट्रोपी। और लॉ ऑफ एंट्रोपी को डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज नई से पुरानी अपने आप होती है, पुराने से नया बनाना पड़ता है, लेकिन नई से पुरानी अपने आप हो जाती है। मकान नया बनाओ, पुराना अपने आप हो जाता है, खंडर अपने आप हो जाता है, खंडर बनाया नहीं जाता है। दूसरा ये कहा गया कि हर चीज ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, नीचे से ऊपर उसको मोटर से चढ़ाना पड़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे नेचुरल प्रोसेस है। ठीक इसी तरह देवताएं भी ऊपर से नीचे अगर आए तो एक नेचुरल प्रोसेस था, कोई कर्म की बात नहीं है, ये ग्रेजुअल परिवर्तन की प्रक्रिया है। समय नित्य परिवर्तनशील है, इसीलिए दिखाया जाता पूर्णमासी कितना दिन रहता है, पूर्णमासी कितना दिन रहता है, एक घड़ी। दूसरी घड़ी से जैसे ही पूर्णमासी अटेन हुई कि दूसरी घड़ी से अमावस्या की ओर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। और अमावस्या में कितनी देर रहता है? एक घड़ी। संपूर्ण अमावस्या हो जाती है कि फिर उसकी पूर्णमासी की ओर यात्रा। इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। समय नित्य परिवर्तनशील है और इसीलिए परिवर्तन की प्रक्रिया नित्य चलती है। तो देवी देवताएं भी संपूर्णता की स्थिति में कितना दिन रहते हैं? एक युग। दूसरे युग से उनकी भी अपूर्णता की ओर यात्रा आरंभ हो जाती है। और इस तरह से धीरे धीरे तीसरा युग जो आया, द्वापर युग, जहां से कहा द्वैत भावना आरंभ हुई, ईश्वर से मांगना शुरू किया कि हे प्रभु शांति दो, सुख दो, ये दो वो दो। मिडिल एज में, इसीलिए हिस्ट्री भी बताती है कि मिडिल एज में भक्ति आरंभ होती है, पूजा पाठ आरंभ होता है और मनुष्य आत्माएं अनेक मंदिर बनाना शुरू करता है। सोमनाथ का मंदिर विक्रमादित्य ने बनाया और विक्रमादित्य ने जब ये मंदिर बनाया, पूजा आरंभ किया, जहां से विक्रम संवत हमारा आरंभ होता है, तो उसके पहले की सतयुग त्रेता के संवत की हमारे पास कोई बात नहीं है, कोई घटना नहीं है। खाली इतना पता है जो गायन करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश हमारा, बस इतना गायन करते हैं। जहां हां ये भी दिखाते हैं, जहां इतनी सात्विकता थी, सतोप्रधानता थी, जहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा भारत था हमारा। तो ये विक्रम संवत से पहले की बात है। जहां से विक्रम संवत आरंभ हुआ, द्वापर युग से, वहां से पूजा पाठ आदि शुरू हुआ। अनेक प्रकार के मंदिर बनाए गए, देवी देवताओं के मंदिर बनाए, शिव के मंदिर बनाए, और जहां से भक्ति मार्ग आरंभ होता है। इसी युग में, इस संसार के अंदर, क्योंकि मनुष्य थोड़ा विचलित हो गए, वो संपूर्णता समाप्त हुई, ईश्वर को पुकारने लगे, लेकिन ईश्वर का आने का टाइम नहीं है, इसीलिए उस संसार में कुछ महान आत्माएं अवतरित होती है मनुष्य को दिशा दिखाने के लिए। और इसीलिए संसार के अंदर सर्वप्रथम इब्राहिम आते हैं, जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद फार ईस्ट में महात्मा बुद्ध आते हैं, जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। और वेस्टर्न दुनिया के अंदर क्राइस्ट आते हैं, जिसने क्रिश्चियन धर्म फैलाया। तो इस तरह से भारत से बाहर ये तीन महान धर्म पिताएं आए, जिन्होंने मनुष्य को एक दिशा दिखाना आरंभ किया। क्या दिशा बताई? जब इब्राहिम इस संसार में आया, तब उन्होंने देखा कि मनुष्य जीवन के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ, जो आज भी उनके धर्म पुस्तक में है। लेकिन अफसोस, वहां के लोग उसको मानते नहीं है। जिस तरह भारत के अंदर गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते हैं, इसी तरह इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम धर्म में जो बातें बताई गई उसकी नहीं मानते। इसी तरह महात्मा बुद्ध जहां गए वहां का दृश्य क्या था, वहां उन्होंने दो बातें देखी कि मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है और मनुष्य के कर्म भ्रष्ट होने लगे हैं। तब उन्होंने कहा दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो। परंतु अफसोस वहां के लोगों ने प्राणी मात्र के प्रति दया तो है ही नहीं। मनुष्य आज ऐसा हैवान बनता जा रहा है कि मनुष्य अपने बच्चों को ही खाने लगा है ना। इसीलिए महात्मा बुद्ध को मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। ठीक इसी तरह जहां क्राइस्ट गए थे वहां का हिसाब क्या था, तो वहां क्राइस्ट ने दो बातें देखी। उस समय उस वेस्टर्न दुनिया के अंदर कि मनुष्य जीवन में प्रेम का अभाव है और सत्यता का अभाव है, इसलिए उन्होंने प्रचार किया सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। लेकिन जो सत्य और प्रेम का प्रचार कर रहा था उसके साथ क्या हुआ, उसी को सूली पर चढ़ा दिया गया। इतना नफरतपूर्ण व्यवहार, तो ये बताता है कि उस समय की मांग क्या थी। लेकिन अफसोस उस समय के लोगों ने उसको समझा ही नहीं और इसीलिए झूठ इतना व्याप्त हो गया, जिसको आज भी दुनिया में कहा जाता है व्हाइट कॉलर लाइज, है ना। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं जो पता ही नहीं चलता और वो स्वीकार्य है। और प्रेम का अभाव, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, प्रेम का अभाव, नफरत के बीज बोना, ये इनकी फितरत में है। इसलिए कहा कि जो महान आत्माओं ने उस समय के लोगों को गाइड करना चाहा, लेकिन उस समय के लोगों ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। और इसलिए परिवर्तन किस दिशा में जाता गया, डिटोरिएशन की ओर ही जाता रहा। और तब कहा संसार का चौथा युग आया, जिसको कहा जाता है कलयुग, कलह क्लेश वाला युग, जहां स्वास्तिक का हाथ ऊपर उठता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी अनराइटियसनेस अपनी चरम सीमा को पहुंच जाता है, अधर्म अपनी चरम सीमा को प्राप्त करता है, अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, दुराचार इस युग में देखने को मिलता है। ये समय का प्रभाव है कि हर चीज जब तक अति में न जाए तब तक अंत आ नहीं सकता है। कोई चीज की अति होती है वहां से फिर अंत, और अंत नई आद को आरंभ करता है। तो इसीलिए कहा अधर्म अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा जब समय आता है तो इस कलयुग को कहा ही जाता है विकृतियों का साम्राज्य आरंभ होता है। दूसरे शब्द में उसको कहते हैं रावण राज्य। रावण राज्य माना, रावण कहा जाता है कि बहुत विद्वान था, इतना शास्त्र का ज्ञाता था, रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं, बहुत बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, उसको कोई मार नहीं सकता था। रावण जैसा धनवान कोई नहीं, सोने की लंका थी, है ना। लेकिन फिर भी आज रावण को कोई अपना आदर्श मानेगा? नहीं मानता है। क्यों? क्यों नहीं मानता है? क्योंकि दो विकृति विशेष उसके अंदर थी। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर था, और दूसरा चरित्र भ्रष्टता उसके अंदर आ गई, जो सीता माता का अपहरण कर लिया। ये दो बातों ने उसके राज्य को समाप्त किया। आज की दुनिया को अगर देखा जाए तो क्या है? भौतिकता अपनी चरम सीमा पर है, और भौतिकता का इन्वेंशन किसने किया? मनुष्य ने। तो आज की दुनिया में मनुष्य रावण की तरह बुद्धिशाली है। मनुष्य के पास धन दौलत खूब है, मनुष्य जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, ब्रह्मास्त्र हैं उनके पास, मिसाइल पावर है, तो बुद्धिशाली है, शक्तिशाली है, धनवान है। लेकिन आज के मनुष्य में भी ये दो बातों की कमी आ गई। मनुष्य में भी अहंकार चरम सीमा पर जा रहा है, और दूसरा अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता। ये दो कारण ही है जो आज के इस कलियुगी दुनिया का भी सर्वनाश करने के लिए निमित्त बनती है। इसीलिए कहा कि आज की दुनिया को अगर देखा जाए तो सोने की लंका की तरह ही चमक रही है। रात्रि के समय में अगर बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका ही चमकती है ना, कि नहीं? इतना धनवान बन गया मनुष्य, शक्तिशाली बन गया है, और इतना ही बुद्धिशाली है। लेकिन वो बुद्धि किस ओर लगा रहा है? आज का यूथ बहुत बुद्धिशाली है, लेकिन कहां लगा रहा है अपनी शक्ति? साइबर क्राइम्स में। बुद्धिशाली व्यक्ति वहां जाएगा, अनपढ़ तो नहीं लगाएगा साइबर क्राइम्स में, हैकिंग में लगा रहा है, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक कर रहा है। वो बुद्धिशाली कर सकता है ना, अनपढ़ तो नहीं करेगा ना। तो विकृतियों की ओर मनुष्य भी अपनी बुद्धि की शक्ति लगा रहा है। जहां इंसान बंधन में महसूस करता है, बेड़ियों में है, लेकिन आज की दुनिया में भी कई लोग ये भी कहने वाले हैं, अरे कलयुग तो अभी बच्चा है, अभी तो कितना 5000 साल बीता है, 432,000 साल बाकी है। अब सोचो 5000 साल में ये हालत हो जाए तो 432,000 साल, अरे 4 लाख छोड़ो, 32,000 छोड़ो, खाली 32 साल ही ले लो, तो ये सृष्टि की क्या हालत होगी? वो किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत गाया है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कहां तुमने दैवी सृष्टि को रचा था, सतयुग को बनाया था, लेकिन आज धीरे 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 विकृति इस तरह से आ गई कि मनुष्य क्या बन गया है। और इसीलिए ये हालत आज के संसार की हो गई है, जहां दिनों दिन संसार के अंदर भी आप देखते हैं, साइंटिफिक प्रूफ है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी है, सारे विकृतियां कहां ले जा रही है मनुष्य को, महाविनाश की ओर ले जा रही है। और इसलिए पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पृथ्वी पर आ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नेचर इंबैलेंस हो रहा है, वृक्ष कटते जा रहे हैं, और जिस तरह से इरोजन हो रहा है, आज हिमाचल प्रदेश का क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। आज से पहले इतना भयानक दृश्य नहीं था, लेकिन ये मनुष्य ने जिस तरह से पांचों तत्व को एक्सप्लॉइट किया है, आज उसी का नतीजा इंसान भी भोग रहा है कि आज ये पांचों तत्व इंबैलेंस हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप आएंगे, सुनामी लहरें भी आएंगी, बारिश अतिवृष्टि कई स्थानों पर अनावृष्टि, कई स्थानों पर ज्वालामुखी फट रही है। ये सब नेचर इंबैलेंस जो मनुष्य ने किया है, ये बहुत महान परिवर्तन का संकेत दे रहा है। और इसीलिए ऐसे समय पर जो भगवान ने भी वायदा दिया है भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब परमात्मा को भी संसार में आना ही पड़ता है, और आकर के अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनःस्थापना, सतयुग की पुनःस्थापना ईश्वर को करना ही पड़ता है। और इसीलिए परमात्मा जब आते हैं वही गीता ज्ञान देने के लिए, गीता के वायदे के हिसाब से जब भगवान आते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे अभी तो बहुत साल पड़े, अभी भगवान कहां से आएगा, है ना? और क्या सबूत है आपके पास कि भगवान आया है, सबूत मांगते हैं। लेकिन आज के युग में भगवान कोई श्री कृष्ण के रूप में नहीं आएगा, श्री राम के रूप में नहीं आएंगे। गीता के सातवें अध्याय में लिखा है, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं, कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। आज अगर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के आए संसार में, तो लोग उसको अपना कार्य करने देंगे या सेल्फी खिंचवाने पहुंच जाएंगे, क्या करेंगे? ज्ञान नहीं सुनेंगे कि बस एक सेल्फी तो ले ले मैं, एक सेल्फी तो ले ले वे, क्या करेंगे उस सेल्फी को? ज्ञान से जब समझ आएगी, परिपक्वता बढ़ेगी, तो परिवर्तन को अपनाना, समय की मांग को समझना सहज हो जाएगा। इसलिए कहा, आज से कुछ साल पहले भारत के अंदर गणेश जी ने दूध पिया था, आप लोगों को याद होगा, मंदिरों में लाइन सारी रात लगी थी, और उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फिर भी आधे घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर न्यूज पहुंच गई थी, और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने लग पड़े कि इतना लीटर दूध कहां जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा था, कोई रिसर्च कर नहीं पाया, अपने अपने कारण बता दिए। ठीक इसी तरह कहा कि आज अगर भगवान साक्षात कोई दिव्य स्वरूप में अवतरित हो जाए तो लोग उसको काम करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो इसीलिए परमात्मा अति साधारण रूप में आता है। तभी तो कहा गया है नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। अर्थात भगवान ने वो श्रेष्ठ करनी सिखाई जिससे नर से नारायण वो खुद अपने पुरुषार्थ से बना, नारी से श्री लक्ष्मी समान बने। और उसके लिए भगवान भी आकर सिर्फ दो बातें कह रहे हैं। कौन सी दो बातें? भगवान भी यही कहते हैं, आत्मशुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। यही दो बातें हैं। लेकिन जब ये दो बातें कहते हैं, इसलिए कहा भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान ने ये दो बातें कही तो कहेंगे, क्या कहेंगे भगवान को भी, अरे सारे लोग योगी बन गए, पवित्र बन गए तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमने थोड़ी लिया है, वो तो उसका है ना, उसको मालूम है कैसे चलाना है। वो अगर आज्ञा कर रहा है तो समय की ये मांग है, तभी तो कह रहा है। क्योंकि भगवान को कहा जाता है जानी जाननहार, सब कुछ जानता है, तो वो समय को भी बहुत अच्छे से जानता है। और इसीलिए बताता है कि ये समय क्या चाहता है। अगर समय के हिसाब से परिवर्तन नहीं किया तो समय या तो मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, फिर भी नहीं हुए तो समय अस्तित्व को मिटा देगा। इसलिए भगवान जब कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा, तभी तो कह रहे हैं। तो जानी जाननहार ने ये बताया कि योगी बनो, पवित्र बनो, ये समय की पुकार है। आज जिस तरह से संसार के अंदर एड्स बढ़ रहे हैं, उसका कोई इलाज है? है ही नहीं। समय की मांग है कि संयम को जीवन में धारण करना ही जरूरी है। इसी तरह आज प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आत्मरक्षा, बहनों की, महिलाओं की, जिस तरह से मणिपुर की घटना हुई या जिस तरह से आज सब जगह नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं। शास्त्रों के अंदर दर्शाया है कि रावण इतना शक्तिशाली था, लेकिन सीता जी के पास जब जाता था तो सीता जी एक घास का तिनका उठा करके कह देती थी, रावण इस तिनके से आगे तूने कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा। ये ताकत थी सीता जी के पास। कौन सी ताकत थी जिस कारण रावण भी उसको स्पर्श करने से डरता था? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत थी, तपस्या की शक्ति थी। इसीलिए रावण ने भी सीता को कभी भी स्पर्श तक नहीं किया, एक घास का तिनका रख देती। आज के संसार के अंदर जिस तरह से विकृतियां बढ़ती जा रही है, इस संसार के अंदर आत्मरक्षा का साधन क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत, इसके सिवाय कोई ताकत नहीं है, कोई चीज रक्षा नहीं कर सकती है। इसीलिए भगवान कहते हैं ये समय की पुकार है, उसको समझो। जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही है, ये घटनाएं संकेत दे रही है कि आत्म रक्षा अगर चाहते हो तो अपने जीवन में इस शक्ति को अपनाओ। ये शास्त्रों ने भी कहा है। तब कई बार कई लोग सोचते हैं फिर नई दुनिया अगर सतयुग आने होंगी तो कैसे आएंगे। अरे आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ, जीसस का जन्म कैसे हुआ? अगर वर्जिन मेरी, कुमारी मेरी बिना किसी भोग बल के जीसस को जन्म दे सकती है, इसीलिए जीसस का पिता का पता नहीं है। मदर मेरी का चर्च मिलेगा आपको, उसके फादर का है ही नहीं क्योंकि मेरी वर्जिन थी, कुमारी थी, और इसीलिए कुमारी मेरी बिना किसी भोग बल के जीसस को जन्म दे सकती है। आज से 2000 साल पहले की बात है। तो इस संसार के अंदर ईश्वर के पास भी पूरा प्लानिंग है कि आने वाले समय को मुझे कैसे चलाना है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस वो जो श्रीमत दे रहा है उस श्रीमत को पालन करना जरूरी है। ये परमात्मा जब कह रहे हैं तो समय की पुकार को बता रहे हैं। आज भी संसार के अंदर एक पक्षी है जो बिना भोग बल के उत्पत्ति करता है। हाँ, दुनिया के अंदर अब बताया जाता कि मोर भी विकृत हो गया है, लेकिन वही मोर विकृत हुए हैं जिसके अंडे को एक मुर्गी ने पैदा किया है। बाकी नेचुरल स्वरूप से जो मोर पैदा होते हैं वो कभी विकृत नहीं होते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने मोर के पंख को अपने ताज में सुशोभित किया है। ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया है, ये सम्मान दिया है कि जितनी परम पवित्र श्री कृष्ण की आत्मा है उतना ही पवित्र ये पक्षी कलयुग में भी है, इसलिए उसको सम्मान दिया गया है। भावार्थ ये कि आने वाले समय में ईश्वर के पास फुल प्लानिंग है कि संसार को कैसे चलाना है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उस आज्ञा को पालन करना है, योगी बनो, पवित्र बनो। अर्थात इस बात को जीवन के अंदर अपनाना है। देखो आप लोगों को कई बार ब्रह्मा कुमारी बहनों ने, भाइयों ने निमंत्रण दिया होगा, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू, चलो, कितनी बार कहा होगा। हर बार आपने क्या कहा, अरे ऊपर वाले की मर्जी होगी ना तब पहुंच जाएंगे। तो अभी जो आए हैं किसकी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की मर्जी से आए, क्या कहेंगे? ऊपर वाले की मर्जी से आए ना, क्योंकि ऊपर वाला सिलेक्ट करता है। नई दुनिया की जो सर्जना है ना, इलेक्शन पर नहीं है, सिलेक्शन पर है। उसने जरूर आपके अंदर कुछ न कुछ सात्विकता का अंश देखा होगा, तभी आपको सिलेक्ट करके यहां तक ले आया। आने वालों की लिस्ट और भी लंबी थी, लास्ट मोमेंट कोई ना कोई काम आया, कैंसल हो गए। और आप में से कई ऐसे भी होंगे जो दूसरे के नाम पर पहुंच गए, क्योंकि उसकी जो सिलेक्शन थी, उसकी सिलेक्शन थी ना, ऐसे ही थोड़ी आए हैं। लेकिन अब यहां से जाने के बाद किसकी मर्जी चलेगी, उसकी या अपनी, किसकी मर्जी से चलेंगे, उसकी या अपनी? वो नारद जी की बात याद आती है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान एक डायरी देख रहे थे। तो नारद जी ने पूछा, भगवान आज डायरी देख रहे हैं, क्या लिखा है इस डायरी के अंदर? तो भगवान ने कहा कुछ नाम लिखे हैं। तो नारद जी ने पूछा किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। तो नारद जी बड़े खुश हो गए कि भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मैं तो आपको बहुत याद करता हूं। तो भगवान मुस्कुराए और कहा, तेरा नाम सबसे पहला नंबर है, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता है। फिर भी नारद जी को विश्वास नहीं हुआ, तो कहा मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। जब अपना नाम सबसे पहला नंबर देखा, बड़ा खुश हो गया। आगे देखने लगा कि भगवान ने किस किस के नाम लिखे हैं। ढूंढने लगा इसमें हनुमान जी का नाम कहां है। सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम आप सभी जानते हैं, भगवान को डायरी दी, ढूंढने निकले हनुमान जी को। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर ईश्वर का नाम ले रहे थे। नारद जी ने जाकर वहां कहा, ये सारा ढोंग बंद करो। कहा क्यों? कहा अभी मैं भगवान की खास डायरी देख करके आया हूं, जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे थे जो भक्त उनको बहुत याद करते हैं, और तुम्हारा नाम था ही नहीं। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे। हनुमान जी ने कहा, मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी याद करता हूं, मैं तो उसके दिल में रहता हूं। नारद जी क्या बोलते? फिर कुछ दिन के बाद घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए, तो भगवान एक छोटी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने देखा, ये डायरी तो अलग लग रही है। पूछा, भगवान उस दिन तो अलग डायरी थी, आज अलग डायरी है, ये डायरी में क्या लिखा है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। कहा इसमें किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं। कहा आप भी याद करते? कहते हाँ। तो कहा आप किसको याद करते? मैं डायरी देख सकता हूं? भगवान ने डायरी दे दिया, तो देखा हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था, और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था। भाग्यशाली कौन जो भगवान को याद करे वो, या जिसको भगवान याद करे वो। तो आप सबका नाम कौन सी डायरी में पता है? छोटी वाली में। भगवान ने याद किया तब आप यहां पहुंचे, नहीं तो टाइम नहीं था। हमेशा यही कहते रहे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम होगा तो आ जाएंगे, उसकी मर्जी होंगी तो आ जाएंगे। उसने जब आपका नाम वो छोटी डायरी में लिखा, तब आप टाइम भी मिल गए और यहां पहुंच भी गए, है ना? तो भाग्यशाली कहेंगे। इसलिए पूछा कि अब यहां से जाने के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे? किस्मत। किस्मत कैसे बनती है पता है? अब किसकी मत पर चलना है, अपनी मत पर या उसकी मत पर? वो लाया यहां पर, आपको अवगत करा दिया कि समय की पुकार क्या है। उसके बाद भी अब अगर आप अपनी मत पर चलते रहे तो किस्मत क्या होगा? बनेगी या बिगड़ती जाएंगी? इसीलिए समय का शिकार नहीं बनना है। समय के साथ अपने अंदर उस परिवर्तन को अपनाना है, आध्यात्मिकता को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है, और अपने जीवन को उस सतयुग के लिए पात्र बनाना है। क्योंकि जिसकी जैसी पात्रता होगी वो उस समय पर अवश्य जाएंगे। जिसकी पात्रता सतयुग जैसी होगी वहां जाएगा, जिसकी पात्रता द्वापर युग की होगी वो वहां जाएगा। इसलिए तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। कहां से आ रहे हैं? 33 करोड़ से आज कितने करोड़ हो गए? 800 करोड़ आत्माएं हो गए। तो इसलिए बताता है कि जिसकी पात्रता जैसी है वो वहां जाएगा। आप सबको भी भगवान चांस एक ही बार देता है, बार बार नहीं देता है। इसीलिए आपको यहां तक पहुंचा दिया, उसके बाद किसकी मत पर चलेंगे? भगवान की मत पर या अड़ोसी पड़ोसी की मत पर? अरे क्या करना है ब्रह्मा कुमारी में जाकर के, वो तो जादू कर देती है। क्या कहेंगे? जादू किया ब्रह्मा कुमारियों ने आप पर? जादू किया? जादू किया नहीं किया? लगा नहीं लगा? लगा जादू, जादू तो लगा ना। यहां आकर के एक जादुई दुनिया नहीं देखी? यहां से स्टेशन जाएंगे ना तो पता चलेगा, अरे स्वर्ग से जैसे नरक में पहुंच गए। स्वर्ग लग रहा है ना, स्वर्ग में आ गए ना। यहां 3 दिन कैसे बीते? स्वर्ग में बीते कि नहीं? तो भगवान ने सैंपल भी दिखा दिया आपको। अब सैंपल देखने के बाद भी अगर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? फिर तो किस्मत ही कहेंगे। तो इसीलिए वो कहानी याद आती है कि एक बार एक सेठ जी था, वो जा रहा था, नदी क्रॉस करनी थी, पुल पर से क्रॉस जब कर रहा था तो पुल बहुत नाजुक हो गया था, अचानक बीच में पहुंचा और टूटा, पानी में बहने लगा। नदी बारिश के दिन होने कारण लबालब भर के बह रही थी, उसमें वो भी बहने लगा और जैसे तैसे उसने कोई वृक्ष जो गिरा हुआ था उसकी टाल डाली पकड़ करके लोगों को पुकारने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। एक सज्जन ने देखा, अरे सेठ जी, उसने सोचा अरे भाई सेठ जी को तो बचाना चाहिए, तो वो किसी साधन को लेकर के सेठ जी को कहा, हाथ दो, हाथ दो, खींच लू। सेठ जी कहे, हाथ तो दूंगा नहीं, हाथ तो दूंगा नहीं। अरे भाई हाथ नहीं देंगे तो बह जाएंगे, हाथ दो। फिर वो सज्जन को याद आया, सेठ जी ने कभी देना तो सीखा ही नहीं है, लेना ही लेना सीखा है। तो सज्जन ने कहा, अच्छा मेरा हाथ लो। तो कहा, हाथ ले लूंगा, है ना। और हाथ पकड़ लिया उसने, तो ये सज्जन ने उसको खींच करके बचा लिया। आज हम भी आपको कहते हैं, हमारा हाथ लो, अगर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक कलयुगी दुनिया में कहां इस विषय वैतरणी नदी में कहां गुम हो जाएंगे पता नहीं। तो हाथ ले तो लो, है ना, देना नहीं है कुछ भी। यहां किसी ने मांगा कुछ आपसे? देना नहीं है, लेकिन लो तो सही। क्या करेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे? बहुत अच्छी बात है। तो ये था काल चक्र का ये रहस्य। परिवर्तन की वेला है, समय बदल रहा है, और इस समय की मांग को समझो और आप देखो किस तरह से जीवन और किस्मत बदलने लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।